एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अमरीकी साहित्य की कह सकते हैं एक नींव का पत्थर है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा।
जी हाँ बिल्कुल, ये वो कहानी है जिसने अमेरिकन ड्रीम की परिभाषा को गढ़ने में मतलब बहुत मदद की।
और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि पता चलता है, फ्रैंकलिन इसे पूरा नहीं कर पाए थे।
हाँ ये सही है, ये 1771 से 1790 के बीच अलग अलग हिस्सों में लिखी गई और उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई।
अच्छा।
और फ्रैंकलिन, जिनका जीवन काल 1706 से 1790 तक रहा, वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, अरे वो तो एक प्रिंटर थे, प्रकाशक, आविष्कारक, वैज्ञानिक, एक बहुत कुशल राजनीतिक और हाँ अमेरिका के संस्थापकों में से एक भी।
सोचे जरा, एक मोमबत्ती बनाने वाले का बेटा, 17 बच्चे थे उनके पिता के और ये 15वें थे।
हाँ।
और स्कूली शिक्षा बस 2 साल। तो सवाल उठता है कि कैसे कैसे एक भागा हुआ प्रशिक्षु, जिसके पास नए शहर में शायद कुछ ही सिक्के रहे होंगे,
बिल्कुल,
वो दुनिया के इतने सम्मानित, इतने प्रभावशाली लोगों में से एक बन गया। ये सवाल ही मुझे लगता है इस किताब को इतना दिलचस्प बनाता है।
बिल्कुल सही। और ये किताब सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये उस सवाल का जवाब देने का एक प्रयास भी है एक तरह से। ये गरीबी से अमीरी और गुमनामी से शोहरत तक का सफर तो दिखाती ही है, साथ ही ये अथक आत्मसुधार, नागरिक जिम्मेदारी और व्यवहारिक बुद्धि के जरिए सफलता पाने का एक खाका भी पेश करती है।
हाँ, और वो अपनी गलतियों को इरेटम कहते थे, है ना, जैसे प्रिंटिंग की गलती।
हाँ हाँ बिल्कुल, इरेटम मतलब सुधार योग्य गलतियां।
हम्म।
वो अपने जीवन को गणनात्मक कदमों और इन्हीं सुधार योग्य गलतियों की एक श्रृंखला के रूप में देखते थे।
तो चलिए इस असाधारण जीवन की यात्रा पर चलते हैं। शुरू करते हैं उनके शुरुआती सालों से। बोस्टन में जन्म 1706 में।
जी, एक बहुत बड़े परिवार में, पिता जोशिया, जैसा आपने कहा, मोमबत्ती और साबुन बनाते थे।
और पढ़ने का शौक वो तो बचपन से ही था, कहते हैं।
हाँ, पढ़ने का जबरदस्त शौक, ज्ञान की एक ऐसी भूख जो कभी मिटी ही नहीं, और यही भूख उनकी असली शिक्षक बनी, क्योंकि स्कूली शिक्षा तो जैसा हमने कहा बस 2 साल की थी।
तो उनकी ज्यादातर शिक्षा किताबों से हुई।
बिल्कुल, जॉन बनियन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, प्लूटार्क की लाइव्स, ऐसी किताबें वो बड़े चाव से पढ़ते थे। और लिखना भी उन्होंने बड़े अनोखे ढंग से सीखा।
कैसे?
द स्पेक्टेटर नाम की एक पत्रिका थी, वो उसके लेखों को पढ़ते, फिर उनकी एक रूपरेखा बनाते।
अच्छा।
और फिर उसे अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करते थे। इसी अभ्यास ने उनकी वो सीधी, स्पष्ट और प्रभावी लेखन शैली की नींव रखी जो बाद में बहुत काम आई।
सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें अपने बड़े भाई जेम्स के यहाँ भेज दिया गया प्रिंटिंग प्रेस में प्रशिक्षु बनने।
हाँ, काम तो सीख लिया वहाँ, लेकिन कहते हैं भाई के साथ उनके संबंध कुछ तनावपूर्ण थे।
और फिर 16 साल की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने बोस्टन में थोड़ी हलचल मचा दी थी।
हाँ हाँ, वो साइलेंस डू गुड वाला किस्सा। उन्होंने काल्पनिक अधेड़ विधवा साइलेंस डू गुड के नाम से गुप्त रूप से पत्र लिखना शुरू किए।
अच्छा।
इन पत्रों में समाज के रीति रिवाजों पर बड़ा तीखा और मजाकिया व्यंग्य होता था, और वो इतने लोकप्रिय हो गए कि उनके भाई जेम्स ने अनजाने में उन्हें अपने अखबार में छाप भी दिया।
और जब पता चला कि ये उनके छोटे भाई का काम है
तो जेम्स को काफी गुस्सा आया, शायद थोड़ी जलन भी हुई होगी, कौन जाने।
और इसी बढ़ते टकराव के कारण फ्रैंकलिन ने अपना प्रशिक्षुता अनुबंध तोड़ दिया।
हाँ, जो समय अवैध था।
बिल्कुल।
और 1723 में 17 साल की उम्र में वो बोस्टन से भाग निकले। ये उनके जीवन का पहला बड़ा, एक तरह से कहें तो साहसिक कदम था, अपनी राह खुद चुनने की दिशा में। बिल्कुल सही कहा आपने, ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की घोषणा जैसा था। और फिर उनका फिलाडेल्फिया पहुंचना, वो भी उनके जीवन का एक बड़ा यादगार क्षण है।
हाँ, वो रोटियों वाला किस्सा।
हाँ वही, वो खुद बताते हैं इसे बड़े रोचक ढंग से। थके हुए, मैले कुचैले, जेब लगभग खाली और हाथ में 3 बड़ी फूली हुई रोटियां लिए बाजार स्ट्रीट पर चल रहे थे।
एक वो खा रहे थे, 2 बगल में दबा रखी थी। कहते हैं उनकी भविष्य की पत्नी डिबोरा रीड ने उन्हें इसी हालत में देखा और अपनी हंसी रोक नहीं पाई।
ये दृश्य जैसे उनकी विनम्र शुरुआत का प्रतीक बन गया।
बिल्कुल। फिलाडेल्फिया में उन्हें सैमुअल कीमर नाम के एक प्रिंटर के यहाँ काम मिल गया और जल्दी उनकी काबिलियत ने पेंसिल्वेनिया के गवर्नर सर विलियम कीथ का ध्यान खींचा।
कीथ ने उन्हें बड़े सपने दिखाए हैं ना,
लंदन जाने और अपना प्रेस खोलने के लिए मदद का वादा किया।
हाँ वादा तो किया। फ्रैंकलिन उस समय युवा थे, शायद थोड़े अनुभवहीन भी। उन्होंने भरोसा कर लिया और 1724 में लंदन पहुंच गए।
लेकिन
वहां जाकर पता चला कि मदद के वादे सब झूठे थे। कोई क्रेडिट पत्र वगैरह नहीं भेजा गया था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने बाद में इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण इरटम यानी चूक कहा।
धोखा मिला उन्हें?
हाँ, धोखा मिला। पर इस धोखे ने उन्हें कड़वा लेकिन बहुत कीमती सबक सिखाया कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति के भरोसे रहने से अच्छा है अपनी काबिलियत और मेहनत पर निर्भर रहना। उन्हें लगभग 2 साल लंदन में एक प्रिंटिंग हाउस में काम करके गुजारने पड़े।
तो 1726 में जब वे फिलाडेल्फिया लौटे तो पहले से ज्यादा अनुभवी और सतर्क हो चुके थे।
बिल्कुल, ज्यादा अनुभवी, सतर्क और अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित। उन्होंने प्रिंटिंग में वापसी की और जल्द ही ह्यू मेरेडिथ के साथ साझेदारी में अपनी दुकान खोल ली।
पर सिर्फ दुकान खोलना काफी नहीं था, उन्हें अपनी पहचान बनानी थी, बाकियों से अलग दिखना था।
और यहीं उनकी वो व्यावहारिक बुद्धि फिर काम आई। वो खुद बताते हैं कि कैसे वे जानबूझकर कागज से लदा ठेला खुद धकेलते हुए सड़कों से गुजरते थे।
क्यों?
ताकि लोग उन्हें एक मेहनती और मितव्ययी कारीगर के रूप में देखें। ये आज की भाषा में कहें तो पर्सनल ब्रांडिंग का एक बहुत सोचा समझा प्रयास था।
समझ गई। वो सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, अपनी प्रतिष्ठा भी गढ़ रहे थे।
बिल्कुल। और फिर 1727 में उन्होंने जुनको नाम का एक क्लब बनाया।
जुनटू, इसका क्या मतलब था?
इसका मकसद था आपसी सुधार। ये उनके जैसे ही महत्वाकांक्षी युवा कारीगरों और व्यापारियों का एक छोटा समूह था। वे हर हफ्ते मिलते थे और दर्शन, नैतिकता, राजनीति, व्यापार, इन सब विषयों पर चर्चा करते थे।
तो ये बस एक डिबेटिंग क्लब जैसा था?
नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। जुनटो फ्रैंकलिन का निजी थिंक टैंक और सोशल नेटवर्क तो था ही, पर धीरे धीरे ये सामाजिक बदलाव का एक इंजन भी बन गया।
अच्छा, कैसे?
इसी समूह के जरिए विचारों का आदान प्रदान हुआ और आगे चलकर अमेरिका की पहली सदस्यता लाइब्रेरी, पहली फायर ब्रिगेड यानी यूनियन फायर कंपनी, फिलाडेल्फिया अकादमी जो बाद में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय बनी, और पेंसिल्वेनिया अस्पताल जैसे कई नागरिक संस्थानों की नींव पड़ी।
कमाल है।
हाँ, जुनटो ने फ्रैंकलिन को सिखाया कि कैसे समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट करके बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। सहयोग की ताकत।
और फिर 1732 में आया पुअर रिचर्ड्स ऑल्मनैक। ये क्या था?
ये एक पंचांग था जिसे वो रिचर्ड सॉन्डर्स के छद्म नाम से निकालते थे। इसमें व्यवहारिक सलाह होती थी, मौसम की भविष्यवाणियां और सबसे बढ़कर बचत, मेहनत और समझदारी पर छोटी छोटी यादगार कहावतें।
जैसे वो अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड।
हाँ बिल्कुल, एक बचाया हुआ पैसा एक कमाया हुआ पैसा है, या फिर जल्दी सोना जल्दी उठना इंसान को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है, ऐसी कई कहावतें थीं।
और ये आल्मनैक बहुत सफल रहा?
हाँ, जबरदस्त हिट हुआ। इसने फ्रैंकलिन को पूरे अमेरिकी उपनिवेशों में घर घर तक पहुंचा दिया। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई। इतने सफल हुए कि 1748 में, सोचिए, सिर्फ 42 साल की उम्र में वो सक्रिय प्रिंटिंग के काम से रिटायर हो गए ताकि अपना पूरा समय विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में लगा सके।
लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आत्मकथा का लेखन 1757 में रुक जाता है।
जी हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है।
इसका मतलब है कि उनके जीवन के वो अध्याय जिनसे हम उन्हें सबसे ज्यादा जानते हैं, जैसे स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार करना, फ्रांस के साथ वो महत्वपूर्ण संधि करना, संविधान बनाने में उनकी भूमिका, वो सब इस किताब में नहीं है।
सही कहा। ये उस व्यक्ति के बनने की कहानी है, उस मुकाम तक पहुंचने की कहानी, उनके निर्माण की प्रक्रिया का दस्तावेज है ये।
तो अब अगर हम उनके मूल दर्शन और मूल्यों की बात करें, वो किस तरह की सोच रखते थे?
देखिए, वे प्रबुद्धता के दौर की संतान थे। तर्क, अनुभव और मानवीय प्रगति में उनका गहरा विश्वास था। उनका नजरिया एक किस्म का व्यवहारिक देववाद कहा जा सकता है।
व्यवहारिक देववाद?
जी।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब वो मानते थे कि एक रचयिता ने दुनिया बनाई और उसके नियम तय कर दिए, लेकिन फिर उसने हमें अपने विवेक और तर्क के अनुसार जीने के लिए छोड़ दिया।
अच्छा।
इसलिए उनके हिसाब से ईश्वर की सबसे अच्छी पूजा किसी कर्मकांड में नहीं, बल्कि अपने साथी मनुष्यों की भलाई करने में है। यही सोच उनकी नैतिकता का आधार भी थी, जिसे उपयोगितावादी कह सकते हैं।
यानी अच्छे काम वो हैं जिनसे समाज का भला हो।
हाँ, जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। और इसी सोच का सबसे ठोस उदाहरण है उनका वो मशहूर प्रयोग।
हाँ, वो नैतिक पूर्णता प्राप्त करने की साहसिक और कठिन परियोजना। कमाल का आइडिया था ये। वो सिर्फ अच्छा इंसान बनना नहीं चाहते थे, वो इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाना चाहते थे।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाकई अद्भुत है। उन्होंने 13 सद्गुणों की एक सूची बनाई।
13? कौन कौन से थे, कुछ याद है?
हाँ, जैसे संयम टेम्परेंस मतलब खाने पीने में अति ना करना, मौन यानी फालतू बातें ना करना, व्यवस्था ऑर्डर हर चीज अपनी जगह, हर काम अपने समय पर, संकल्प रेजोल्यूशन, मितव्ययिता फ्रुगैलिटी फिजूल खर्ची नहीं, परिश्रम इंडस्ट्री, ईमानदारी सिंसियरिटी, न्याय जस्टिस, शीलता मॉडरेशन अति से बचना, स्वच्छता क्लिनलीनेस शांति ट्रैंक्विलिटी पवित्रता चैस्टिटी और विनम्रता ह्यूमिलिटी।
पूरी लिस्ट बना ली उन्होंने, फिर क्या किया?
फिर उन्होंने एक छोटी सी डायरी बनाई, उसमें इन सभी 13 सद्गुणों के लिए कॉलम थे। वे हर हफ्ते एक सद्गुण पर खास ध्यान देते थे।
अच्छा, एक हफ्ता एक सद्गुण के लिए?
जी, और हर दिन शाम को वो जांचते थे कि उन दिन उन्होंने उस सद्गुण के पालन में कहां कहां चूक की। हर चूक के लिए वे काला निशान लगा देते थे
ताकि ट्रैक रख सके।
बिल्कुल, उनका लक्ष्य था कि धीरे धीरे अभ्यास से इन सद्गुणों को अपनी आदत बना लिया जाए ताकि वो अपने आप उनके व्यवहार का हिस्सा बन जाएं।
क्या वे इसमें पूरी तरह सफल हुए? उन्हें पूर्णता मिली?
देखिए, वो खुद मानते हैं कि पूर्णता तो कभी हासिल नहीं हुई। वो कहते थे कि व्यवस्था बनाए रखना उन्हें सबसे मुश्किल लगता था। लेकिन उनका मानना था कि इस कोशिश ने ही उन्हें एक बेहतर और ज्यादा खुशहाल इंसान बनाया। ये प्रोजेक्ट उनके दर्शन का निचोड़ है कि चरित्र कोई ऊपर से मिली हुई चीज नहीं है, बल्कि इसे सचेत प्रयास और तर्क के जरिए गढ़ा और सुधारा जा सकता है। एक तरह से खुद को इंजीनियर करना।
उनकी इस पूरी यात्रा के पीछे की प्रेरणा क्या थी? क्या सिर्फ पैसा और शोहरत ही चाहते थे वो?
पैसा और शोहरत जरूर महत्वपूर्ण थे, पर सिर्फ अपने लिए नहीं। वो इन्हें स्वतंत्रता और प्रभाव हासिल करने का एक जरिया मानते थे। उनकी एक बड़ी प्रेरणा थी आत्म सुधार की, कह सकते हैं एक लगभग जुनूनी इच्छा, हमेशा कुछ नया सीखना, खुद को बेहतर बनाना। और जैसा हमने झुंटो और ठेले वाले किस्से में देखा, वे अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सचेत थे। मेहनत और बचत की छवि बनाना उनके लिए एक रणनीतिक कदम था
ताकि लोग भरोसा करें, व्यापार बढ़े।
बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे उन्हें व्यक्तिगत सफलता मिलती गई, उनका ध्यान समाज की भलाई की ओर बढ़ता गया। उन्हें किसी सामाजिक समस्या को पहचानकर उसका व्यवहारिक हल निकालकर और लोगों को साथ लाकर उसे लागू करने में गहरा संतोष मिलता था।
उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ जरूर आए होंगे जिन्होंने उनकी दिशा ही बदल दी। कौन से थे वो सबसे निर्णायक पल?
हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से 3 घटनाओं को हम बहुत निर्णायक मान सकते हैं। पहला, 17 साल की उम्र में बॉस्टन से भागना, 1723 में।
हाँ,
ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये अपने भविष्य का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की घोषणा थी। उन्होंने दूसरों द्वारा तय रास्ते को नकार दिया और खुद को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की स्थिति में डाल दिया। जोखिम भरा था, पर इसी ने उन्हें अपने जीवन का लेखक बनाया।
और दूसरा मोड़?
दूसरा था लंदन में गवर्नर कीथ द्वारा दिया गया धोखा, 1724 में। ये उनके लिए एक तरह से मोहभंग का क्षण था।
हाँ, वो झूठे वादे।
जी, इसने उन्हें सिखाया कि बड़े लोगों के वादों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, असल ताकत अपने हुनर और मेहनत में होती है। एक अनजान शहर में अकेले पड़ जाने के अनुभव ने उनकी युवावस्था की अनुभवहीनता को खत्म किया और उनमें वो व्यवहारिक समझ पैदा की जो उनके पूरे जीवन में काम आई। ये इरेटम, जैसा वो कहते, एक महंगी लेकिन बहुत अमूल्य सीख थी।
और तीसरा निर्णायक पल?
तीसरा था जुंटो की स्थापना, 1727 में। ये उनके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से आगे बढ़कर सहयोगात्मक नागरिक नेतृत्व की ओर बढ़ने का प्रतीक था। जुंटो के जरिए उन्होंने सीखा कि कैसे विचारों को साझा किया जाता है, कैसे आम सहमति बनाई जाती है और कैसे मिलकर बड़े सामाजिक बदलाव लाए जा सकते हैं। ये वो पल था जब उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तिगत तरक्की और समुदाय की भलाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन की, कह सकते हैं, असली शुरुआत हुई।
तो फ्रैंकलिन के जीवन से आज हम क्या सीख सकते? बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं।
हाँ, बहुत कुछ। सबसे पहले तो निरंतर आत्म सुधार का महत्व, कभी सीखना बंद न करें, हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें।
बिल्कुल।
दूसरा, उनकी वो इरेटम वाली सोच, असफलताओं को व्यक्तिगत हार या चरित्र की कमी मानने के बजाय उन्हें सुधार योग्य गलतियों के रूप में देखना।
जैसे कोई टाइपो ठीक करना हो।
हाँ बिल्कुल वैसा ही, विश्लेषण करना कि क्या गलत हुआ, उसे ठीक करना और बिना शर्मिंदा हुए आगे बढ़ना। ये लचीलेपन का एक बहुत शक्तिशाली मानसिक मॉडल है।
और क्या सीख सकते हैं?
नेटवर्किंग और सहयोग की ताकत, जैसा जुंटो ने दिखाया, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को समाज की भलाई के साथ जोड़ने की क्षमता और ये विचार कि इंसान सेल्फ मेड हो सकता है।
हाँ, ये बहुत बड़ा आइडिया है
कि हमारा चरित्र और भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें मेहनत और समझदारी से गढ़ा जा सकता है। और हाँ, अपनी प्रतिष्ठा बनाने और उसे सहेजने का महत्व, फ्रैंकलिन जानते थे कि लोग आपको कैसे देखते हैं ये बहुत मायने रखता है।
ये सारी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं, है ना? करियर की शुरुआत की अनिश्चितता हो, या कभी भरोसे का टूटना, या फिर अपने समुदाय या नेटवर्क का निर्माण करना, ये सब अनुभव आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा हैं।
बिल्कुल, और उनका वो व्यवहारिक, कभी कभी शायद थोड़ा गैर भावुक सा रवैया भी गौर करने लायक है, जैसे वो अपनी शादी का वर्णन करते हैं।
हाँ, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम उन्हें एक संपूर्ण इंसान के रूप में देखें, किसी देवता की तरह नहीं।
एकदम सही। उनकी आत्मकथा, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कुछ मुश्किल पहलुओं को या तो बहुत संक्षेप में बताती है या शायद नजरअंदाज कर देती है, जैसे प्रशिक्षुता तोड़ना, उनका देववाद जो उस समय के समाज के लिए शायद विवादास्पद रहा हो, या उनका एक नाजायज बेटा होना, या जीवन के शुरुआती दौर में गुलाम रखना। हालांकि ये भी सच है कि बाद में वो दास प्रथा उन्मूलन के प्रबल समर्थक बन गए थे। तो ये याद रखना जरूरी है कि ये एक जटिल व्यक्ति का आत्मचित्रण है, किसी आदर्श का नहीं।
बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें अगर, तो वो तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी होंगी जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए, एक तरह से तीन टेकअवेज?
मेरे विचार में पहली एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि है, वो फिलाडेल्फिया में उन फूली हुई रोटियों के साथ उनका आगमन।
हाँ, वो दृश्य।
हाँ, वो अजीब सा थोड़ा हास्यप्रद दृश्य हमें याद दिलाता है कि बड़ी से बड़ी उपलब्धियों की शुरुआत अक्सर बेहद साधारण, यहाँ तक कि थोड़ी अटपटी परिस्थितियों में होती है। ये महानता के पीछे छिपी मानवीय कमजोरी और विनम्रता का प्रतीक है।
सही कहा। दूसरे एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि क्या होगी?
वो होगी नैतिक पूर्णता पाने के लिए उनका वो व्यवस्थित, लगभग वैज्ञानिक तरीका अपनाने का दुस्साहस, वो 13 सद्गुणों वाली परियोजना और वो चार्टिंग विधि।
वो डायरी।
जी, ये सिर्फ सदाचारी बनने की इच्छा नहीं थी, ये एक गहरा विश्वास था कि तर्क और योजनाबद्ध प्रयास से चरित्र को सुधारा जा सकता है, उसे इंजीनियर किया जा सकता है। ये मानवीय तर्क की शक्ति में अटूट विश्वास दिखाता है।
और तीसरी एक सार्वभौमिक सीख जो सबके काम आ सके,
वो है एरेटम की अवधारणा, गलतियों को देखने का नजरिया बदलना।
हाँ,
उन्हें अंतिम विफलता या हार मानने की बजाय उन्हें सुधार योग्य त्रुटियों के रूप में देखना, जैसे प्रिंटिंग में प्रूफ रीडिंग होती है। ये सोच हमें सिखाती है कि हर ठोकर सीखने का, सुधारने का और फिर से कोशिश करने का एक अवसर है। ये लचीलापन और निरंतर प्रगति के लिए एक बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है, जो किसी भी दौर में किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी है।
तो विनम्र शुरुआत से न घबराना, खुद को बेहतर बनाने के लिए व्यवस्थित प्रयास करना और गलतियों को सीखने का जरिया मानना, ये वाकई बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन और उनकी आत्मकथा के बहुत यादगार सबक हैं।
हाँ, और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि जीवन एक सतत निर्माण है, एक प्रोजेक्ट है। फ्रैंकलिन ने खुद को घड़ा और उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब में भी अपनी कहानी लिखने और अपने जीवन को आकार देने की क्षमता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।